الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطارق مکی سورت ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کا نام اس کی پہلی آیت میں الطارق، جو روشن ستارے کو کہتے ہیں، اور یہ ستارہ بہت واضح، بہت ظاہر ستارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں لمبی لمبی سورتیں بقرہ اور نساء پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم والسماء والطارق پڑھو اور والشمس وضحاها پڑھو؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت آپ اپنی نمازوں میں ایسی جیسے آپ عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ظہر اور عصر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح سے اس کو یاد رکھیے گا کہ بروج اور طارق ہم نے ظہر اور عصر میں پڑھنی ہے. اس سورت کے اندر اس کے مضامین وہی جو مکی سورتوں کے ہیں، قیامت کا بیان ہے، لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے، اور خاص طور پہ رات کو جو طلوع ہونے والا ستارہ ہے طارق، اس کی بات ہے، اور قرآن مجید کی بات ہے. تو دیکھتے ہیں اس سورت کو. یہ سورت کا تھیم جو ہے نا، سیکرٹس ہے. یعنی اگر آپ کہیں ہر چیز چھپی بھی، تارہ بھی چھپا ہوتا ہے دن میں، رات میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. آپ اس کو عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو روایت بتائی ہے. تو دیکھتے ہیں سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء، قسم ہے آسمان کی. یاد رکھیے السماء اور سماوات میں تھوڑا سا فرق ہے. سما اور سماوات ہم ایک طرح سے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ سما کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اوپر ہے، اس کے اندر ستارے، سیارے اور سورج چاند بھی آ گیا، اور اس کے اندر فرشتے بھی آ گئے، اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ابو ہیں نا، اوپر ہیں، وہ ساری السما میں. اور جب ہم سماوات کہتے ہیں تو یہ جو آسمان ہے، پہلا آسمان، کیونکہ سمو سے ہے نا، السما سمو سے ہے. سمو جو ہے وہ بلندی کے لیے آتا ہے، تو بلندی پہ اوپر یعنی جتنی چیزیں. لیکن ہاں، السما دنیا کہیں گے تو پھر آسمان، یہ پہلا آسمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انتم اشد خلقا ام السما، تو یہ جتنی اوپر چیزیں ہیں، اور اب تو بہت ساری چیزیں انسان کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اوپر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، وہ طارق، اور طارق کی، طارق تو رو قاف سے ہے. طارق کہتے ہیں پیٹنے کو، کھٹکھٹانے کو، پہلے طریق راستے کو بھی کہتے تھے نا، کیونکہ لوگ اس کے پر، پہلے زمانے میں سڑکیں تو نہیں بنتی تھی، لوگ چل چل کے جس راستے پہ چلتے جاتے تھے وہ راستہ بن جاتا تھا، تو وہ کوٹتے تھے نا اپنے پیروں سے اس کو، تو اس کو طریق کہتے ہیں. تو طارق یہاں پہ وہ جو رات کو آنے والا، اچھا دستک کے لیے بھی طارق کا لفظ آنے لگا، کیونکہ وہ بھی پیٹتے ہیں، اور رات کے وقت جو مسافر ہوتا تھا اس کو طارق کہتے تھے، کیونکہ وہ رات کو آتا تھا اور دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اور رات کو اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو سوچے تاریکی میں بالکل خاموشی ہے، اس وقت کتنی زور سے آواز آتی ہے. تو یہ کیا مطلب آپ کو پتا چلا؟ جو رات کو آئے اور زوردار آواز نوک، ٹھیک ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے الطارق؟ اب میں نے آپ کو ادراکا اور یدریکا کا بتایا تھا نا، کہ ادراکا جب آئے گا تو اس کے بعد کوئی چیز بتائی جائے گی، لیکن یدریکا کے بعد وہ بتایا بھی نہیں جائے گا کہ وہ چیز کیا ہے.
मगर अदराका के बाद भी जब वो बताई जाएगी ना, तो वो भी पूरी तरह आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, वो भी उसका एक क्लू ही होगा, ठीक है, फिर भी आप पूरी तरह समझ नहीं सकते। लेकिन जब युदरीका कहा जाएगा ना, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आप समझ सकते, इसलिए उसको बताया ही नहीं जाता, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता वो तारिक क्या है? अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब कोई बहुत ही बड़ी चीज है जिसको इंसान समझ ही नहीं सकता। अन्नजम मुस्ताकिब, वो है सितारा जो साकिब है, साकिब जो रोशन और चमकदार, एक्चुअली सबका कहते हैं तारे जो सुराख करती हो जो चीज, तो तारा भी उसकी रोशनी भी देखे ना, रात को आसमान में सुराख करती भी जमीन तक पहुंचती है। तो तारे क्या है हमें यहां से पता चला, वो तारे की तरफ इशारा है, वो घर पे आके नॉक करने वाले की तरफ नहीं, या रात को सफर करने वाले की तरफ नहीं, इसकी तरफ नहीं है कि आप वो समझने लगो कि वो वाला तारिक है। ये अतारिक जो नज मुस्ताकिब है, अब इतनी अमेजिंग बात है ना, ये 1400 साल पहले ये हमें बात बताई गई, लेकिन आज भी अगर आप अभी नहीं लेकिन बाद में आप देखिएगा द नॉकिंग स्टार, तो आपको पता चलेगा कि सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर के साइंसदानों ने अब एक सितारे की जो आवाज थी ना उसको वो करने की कोशिश की कि हम उसको मतलब जाने, तो उसको जब उन्होंने उसकी आवाज को देखा तो वो क्या थी, जैसे कोई नॉक कर रहा हो, थ्रॉबिंग एक साउंड, जोर जोर से नॉक करते हैं। और सुबहान अल्लाह कुरान ने तब बताया ऐसा एक सितारा है। अल्लाह हू अकबर।
तो सितारे जो थे ना, अरबों की जिंदगी में बहुत एक अहमियत रखते थे, इसलिए कि वो लोग रात को सफर करते थे और अपना सफर जो है ना सितारों को देख के करते थे, क्योंकि उससे वो गाइडेंस उनको मिलती थी, जीपीएस तो था नहीं, तो इसी के एंगल्स को देखते थे, उससे पता चलता था उनको कि रास्ता क्या है। और सितारों को सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर, अब जब साइंस बताती है ना और आप सितारों के बारे में जानते हैं, तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं कि या अल्लाह ये क्या तेरी मखलूक है, कितनी बड़ी है और कितनी दूर है, और तूने इसके जरिए आसमाने दुनिया को सजाया हुआ। जैसे हम सूरह मुल्क में पढ़ चुके, आसमाने दुनिया पे हैं ये, अभी ये उससे बियॉन्ड नहीं है। और फिर वो कहा जाता है वो इतने 1000 लाइट ईयर्स दूर है, इतने 1000, तो वो इंसान के जहन में भी नहीं आ सकता, जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती, उस स्पीड से ट्रेवल किया जाए तो इतने हजारों साल लगेंगे, और अभी तक लाइट से ट्रेवल करने की इंसान के अंदर ताकत नहीं है, वो अभी तक नहीं लाइट की स्पीड पे ट्रेवल कर सका। तो सोचे कि वो सितारे कितनी कितनी दूर हैं और कितने ह्यूज हैं, कितने मैसिव हैं, और वो सितारे अल्लाह ताला की एक वो मखलूक है जो भी गवाह है, आसमान की भी कसम और तारिक की भी कसम खाई गई, और ये सितारे भी इंसान को वॉच कर रहे हैं। पिछली हमने उसमें पढ़ा था ना शाहिद व मशहूद, तो अल्लाह अकबर के इंसान अमेज्ड रह जाता है कि ये अल्लाह ताला ने क्या क्या मखलूक, और अल्लाह आलम कि ये तारा कैसा है, व मा अदराक बत्तारिक, तुम्हें क्या पता कि वो तारिक क्या है, वो रात को आने वाला क्या है, इंसान नहीं समझ सकता। ये कसम खाई गई तारे की और आसमान की, खा के अब जवाबे कसम क्या है? इन कुल्लू नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, कोई नफ्स ऐसा नहीं है मगर उसके ऊपर एक हाफिज है, एक उसके ऊपर निगेबान है, एक उसके ऊपर हिफाजत करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा हाफिज तो अल्लाह ताला ही है, मगर उसके अलावा अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला फल्लाहु खैरुन हाफिजन फरमाया ना सूरह यूसुफ में, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है। लेकिन एक और कौल भी है कि हिफाजत करने वाले फरिश्ते भी तो हैं, हिफाजत करने वाले ऐसे फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान की हिफाजत करते हैं। और वो क्या है फरिश्ते? वो निगेबान फरिश्ते, वो मुहाफिज फरिश्ते हैं, कि वो इंसान की हिफाजत के ऊपर लगे रहते हैं। और ये कहा जाता है कि इंसान की हिफाजत जब से वो पैदा होता है मौत तक उसकी हिफाजत करते हैं। ये फरिश्ते वो हैं जो कि उसकी कान, उसके हाथ, उसके पैर, हर तरफ से उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बॉडी गार्ड्स कह लें। और ये एक फरिश्ता नहीं है, 100 से ऊपर फरिश्ते हैं जो एक इंसान की हिफाजत के लिए लगे, सिर्फ आंख की हिफाजत के लिए 7 फरिश्ते मुतय्यन मुकर्रर हैं। तो इंसान जब सोचे कि अल्लाह ताला ने, चाहे वो मोमिन है चाहे काफिर है, अल्लाह ताला को मानता है या नहीं मानता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी भी हिफाजत का इंतजाम किया, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर इंसान की हिफाजत ना की जाए तो वो, कहा जाता है कि इतना कुछ है इस कायनात में, जिन्नात ही हैं मसलन, जिन्नात इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो इस वजह से इंसान के पास आके उसको, वो चाहे तो चीर के उसको तिक्का बोटी कर दे, लेकिन वो क्यों नहीं आते उसके पास, इन गार्डियन एंजल्स की वजह से। इसका कॉन्सेप्ट दूसरे मजाब में गार्डियन एंजल्स कहते हैं, और वाकई इंसान के साथ मुहाफिज फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर, ये जो हर वक्त इंसान की हिफाजत कर ले। लेकिन देखिए, हम तो सोचते हैं ना कि कोई किसी से खुश हो तो उसकी हिफाजत करे, जो बिल्कुल बेकार लोग हैं इनकी हिफाजत की भी क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो अल्लाह के नाफरमान हैं, और ये तो ऐसे हैं, और ये तो बदकार हैं, और ये तो गुनाहगार हैं। लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है, तब यही आला रब्बी कुमार तकीबा, इस किस अल्लाह ताला की नेमत को तुम झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने कितनी, कितने जरासीम, कितने वायरसेस, कितने क्या क्या कुछ है इस हमारे इर्द गिर्द की माहौल में, क्या क्या चीजें हैं। जब तक इंसान की तकदीर में कोई चीज ना लिखी हो तब तक वो उसको नहीं पहुंचती, और ये फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। मसलन है कि एक इंसान ने कहीं से गिर पड़ा, अब वो फरिश्ते उसकी हिफाजत पे लगे हुए हैं, उसको कोई चोट ना लगे, उसको बचा ले वहां से। कभी थोड़ी सी जगह से गिरता है इंसान, उसकी टांग टूट जाती, कभी बड़ी जगह से भी गिरता है उसको कुछ भी नहीं होता। तो जो तकदीर में लिखी होती है वो फिर फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, फिर वो उसकी हिफाजत नहीं करते, फिर उसको जाने देते हैं। लेकिन जो तकदीर में नहीं लिखी होती तो उसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ताला ने देखे कैसा हमारी डिफेंस मैकेनिज्म हमारा एक फरिश्तों के जरिए भी रखा है। अल्लाह अकबर। और फिर इंसान फिर उस रब को ना आ, आ, पुकारे और ना उसको माने और ना उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी एहसान मंदी करे, तो कितनी बड़ी नाशुक्री है। बड़े बड़े बादशाह यहाँ पे बॉडीगार्ड रखते हैं, उनको कितना पे करना पड़ता है उनको, और अल्लाह ताला ने बगैर किसी पेमेंट के लिए वे इंसान के लिए बॉडीगार्ड्स रखते हैं, और इंसान इस चीज का एहसास भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो इस चीज को इंसान अगर सोचे तो इस पे ही अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी में वो झुका रहे कि अल्लाह तूने मेरे लिए इतना बड़ा इंतजाम कर दिया। फिर दूसरा, हाफिज का मतलब क्या है? हिफाजत करने वाले, यानी उसके आमाल की हिफाजत करने वाले। वह इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, वो भी तो निगरान है ना, हिफाजत करने वाले निगरान हस्तियां उसके साथ अल्लाह ताला ने रख दी। कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन आतीब, कोई बात नहीं इंसान की जुबान से निकलती मगर उसके साथ एक हाजिर बाश मौजूद है जो कि लिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है हर चीज को, उन्हें आंख के इशारे तक को रिकॉर्ड कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, किधर जा रहा है, हर एक के साथ। अल्लाह हू अकबर। कि इंसान देखे कहाँ बच के जाए, इंसान कहता ना मुझे प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी कैसे उसको मिले, ये जमीन भी शाहिद और ये फरिश्ते भी शाहिद उसके ऊपर, और ये भी निगेमानी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं बल्कि, तो ये मुहाफिज फरिश्ते उसके साथ लगे हुए। तो अल्लाह अकबर। तो तुम ये देखो कि सिर्फ तारों को देख के और उनकी ब्यूटी को देखकर और उसी को तारीफें ना करो कितने खूबसूरत से तारे हैं, बल्कि ये भी सोचो एक एक नफ्स ऐसा है, कितने बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हर एक के साथ मुहाफिज है, किसके साथ नहीं है, इन कुल्लू नफ्स, नहीं कोई नफ्स इससे ज्यादा उस बात की ताकीद इससे ज्यादा क्या होगी कि कोई है ही नहीं जिसके साथ ना हो, हर एक के साथ है, यानी हर एक के साथ। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला ने इनको भी गवाह बना दिया, तो इंसान इनसे ही कम से कम शर्म कर लिया करे। अब ये सिर्फ उससे उस वक्त अलग होते हैं जब वो बरहना होता है, या जब वो टॉयलेट में होता है, या जब वो हम बिस्तरी कर रहा हो, तब वो सिर्फ अलग होते। फल यंदुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, बस चाहिए इसके बाद कि इंसान गौर तो करे किस चीज के ऊपर। यंदुर चाहिए कि देखे, देखे मतलब ये नहीं कि बस देख रहा है, कि बल्कि गौर करे कि वो किस चीज से पैदा किया गया, कहां से आया, अपने अंदर झांक के तो देखे, अपने अपने राज को तो पहले तलाश करे, कैसे पैदा हुआ इंसान। अब ये बात कह के इंसान के साथ देखिए मुहाफिज फरिश्ते भी, 160 मुहाफिज फरिश्ते भी लगे हैं जो हिफाजत कर रहे हैं, और आफतों से हिफाजत कर रहे हैं, शर से हिफाजत कर रहे हैं, और आमाल लिखने वाले भी जो हर वक्त 24/7 ना सोते हैं, ना वो गफलत करते हैं, ना वो किसी वक्त अपने पेन रख के ब्रेक लेते हैं, वो भी लगे हुए हैं। अब उसके बाद काव्या, इंसान को चाहिए फल यंजुरिल इंसान, इंसान को चाहिए कि गौर करे। अगर वो तारीख पे गौर करके उसको नहीं पा सकता, जब उस पे तो नहीं, तुम समझ, क्योंकि वमा अदरा का मत तारीख, उस पे तो नहीं कर सकते, मगर इंसान अपने वजूद पे तो गौर कर ले कि वो कहाँ से आया। तुम्हारे लिए इतना बड़ा अल्लाह ताला ने निजाम चलाया हुआ, इतने फरिश्ते तुम्हारे साथ लगाए हुए, कोई हिफाजत में लगे हैं तो कोई लिखने में लगे हुए हैं। तुम सोचो अपनी तखलीक पे, तो सोचो कि तुम कहाँ से आए हो। ऐसे ही तो नहीं ये हिफाजत के लिए रखे हुए, ऐसे ही तो नहीं ये गवाहियां देने के लिए या ये लिखने के लिए रखे हुए, कोई तो मकसद होगा तुम्हारे आने का भी दुनिया में। अल्लाह की कुदरत को तुम पहचानते नहीं हो। अगर ये तुम्हें गवाहियां कुछ नहीं सिखाती, अगर इससे तुम नहीं सबक लेते कि हर एक के साथ एक निगहबान, वो ये जो दो करामन कातिबीन बैठे हुए हैं और हिफाजत वाले बैठे हुए इतने सारे, इसे तुम्हें नहीं समझ आती, तो तुम एटलीस्ट अपने आप में गौर करके ही अल्लाह ताला को पहचान लो कि तुम किस चीज से पैदा गए। खुलिका खलक अल्लाह ने, यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ने पैदा किया, खुलिका मैंने आपको बताया कि इसमें आपको राज वाली बातें यानी सीक्रेट्स वाली बातें का इसमें ज्यादा होगा, अल्लाह ताला का नाम नहीं आएगा यहाँ पे। जैसे अब तारिक की बात आई, वो भी एक सितारा है जो दिन के बाद नहीं नजर आता, फिर ये हाफिज फरिश्ते भी नजर नहीं आते, फिर इसी तरह इंसान किससे पैदा हुआ ये नहीं यहाँ पे बताया गया। खुलिका मजहूल है, मिम्मा इंदाफिक, इसलिए कि अगर कहा जाए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, तो वो जो रब को मानता ही नहीं है, उसने तो बात सुननी ही नहीं है, तो चलो तुम इस चीज को छोड़ दो, तुम यही देख लो कि तुम्हें किसने पैदा किया। तुम्हें पैदा किया गया पानी से, माँ इन पानी से, दाफिक दाल फा काफ से, वो जो गश करता है, जो पुश करके निकलता है, और ऐसे ही नुतफे से इंसान को पैदा किया गया, उछलने वाला। ये कमजोरी के लिए बताया गया कि तू, तेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि इस पानी को ही कंट्रोल कर ले, वो भी उछल के निकलता है। एक जगह माए महीन बताया गया, ऐसा कि मतलब इंसान उससे घिन खाता है, वो ड्रॉप जो बिल्कुल हकीर है, कि देखो अल्लाह ताला ने कैसे उससे पैदा कर दिया। तुम अल्लाह अकबर उस रब को नहीं मानते जिसने तुम्हें इस हकीर पानी से पैदा किया, और हर एक इंसान ये तो मानता है ना कि वो किस चीज से पैदा हुआ है, ये तो उसको पता है ना। अच्छा अब देखिए, मिम्मा नहीं कहा गया, वरना मिम्मा था, मिन से और मा जो की चीज से कि पैदा किया गया, इसमें अलिफ नहीं है, क्यों, मिम्मा बस ये कहा गया, क्यों अलिफ क्यों निकाल दिया गया, ये बताने के लिए। आपको मैंने बताया था ना, हरूफ कम हो तो माना भी कम हो जाता है, इसलिए कि इंसान जान ले कि वो इतनी हकीर और छोटी सी चीज से पैदा किया गया, ये अलिफ को भी गिरा दिया गया, मिम्मा खुलिक, इसी से सीख लो। और अब ये हर इंसान को कहा गया, चाहे वो काफिर है चाहे वो मुसलमान है, मगर उसको देखना चाहिए। पहले हमें क्या कहा गया, हम किस चीज के ऊपर गौर करें? पीछे सूरतों में और भी किस चीज पे गौर करने को कहा गया ना, खाने पे, अपने खाने पे गौर करो। उसे पिछले पारों में क्या कहा गया, अलियंजुरिल इंसान, या इंसान को, यानी यहां पे इस चीज को कि अपनी तखलीक, उससे पीछे अपने गिजा, उससे पीछे अपने अमल को, कि अपने अमल के ऊपर गौर करो। खुलिका मिम्मा इन दाफिक, जो टपकने वाला है, जो उछलने वाला है, उससे पैदा किया गया तुझे। यखरुजु मिम बैनि सुल्बि वत्तरा, एक जो निकलता है, सुल्ब कहते हैं ये पीछे जो स्पाइन है, बैकबोन, और तराइब, तराबा से सीने की हड्डियों को, जिसको कहेंगे आप रिब्स, कॉलर बोन भी कहा गया, इसमें से निकलता है। इसकी बहुत सारी तावीलें की गई कि कब कहाँ से इंसान का ये निकलता है, जो स्पर्म बनता है वो कहाँ से निकलता है, तो बहुत सी की गई, लेकिन वो साइंटिफिक उसके अंदर हम नहीं जाएंगे कि ये फ्लूड कहाँ से आता है, मगर इसका सफर यहीं से शुरू होता है। इस पानी के सफर की आगाज यहीं से होता है, बनता यहीं से है, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो देखिए, पहले रोशनी की बात की, जो सितारे से निकलती है और वो जमीन तक पहुंचती है तारक, और उसके बाद अब इंसान के सफर की बात है कि उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ। एक वो सफर था जो मिलियंस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर था, वहां से रोशनी तारे से जमीन पे आ रही, और एक सफर है जो बहुत कम फासले का है, यहां से यहां तक। अगर तुम्हें वो नहीं सफर समझ आता तो अपने अंदर ही झांक के ये सफर देख लो। और अब तो इंसान और ज्यादा देख सकता है, और ज्यादा जान सकता है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, इंसान को अब समझ आ सकती है। अल्लाह अकबर, इन्नहु अला रजईही लकादिर, इन्नहु बेशक वो, ऊपर अला ऊपर, रजईही रजू करना होता है ना, लौटना, उसके लौटाने पर, लकादिर अलबत्ता कादिर है, यकीनन कादिर है, क्योंकि वो हुआ युबदी हुआ युईद है, वो इरादा कर सकता है, किसके लौटाने पे कादिर है। एक तो ये कि इस इंसान को लौटाने पे कादिर है, हु की जमीर किस तरफ जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ, आला ऊपर, रजई ही इसके लौटाने पे कादिर है, किसके, एक तो इंसान, जो इंसान बना इससे, जिसकी पहले बात हुई, फलयंजुर इंसान, और दूसरी बात यानी कैसे कादिर है कि अल्लाह ताला उठाएगा कयामत के दिन। दूसरी क्या बात है कि इस नुतफे को लौटाने पर कादिर है, इस नुतफे को कैसे अल्लाह ताला लौटाएगा। देखें, ये नुतफा जो है, रहमे मादर में जब जाता है और उसके बाद वहां से निकलता है, कैसे था, डेड था, इसके वापस लाने पर कादिर है, ये तो गया रहमे मादर में, वापस लौटा तो कैसे, एक इंसान की सूरत में, तो डेड से अल्लाह ताला ने जिंदगी को पैदा किया। इसी तरह कब्र में डेड जाएंगे जमीन की गोद के अंदर, और दोबारा निकलेंगे तो जिंदा होंगे अल्लाह ताला इसको। वो तो गशिंग वाटर था ना, माइन दाफिक था, और वो जब गया तो किस सूरत में था, और निकला तो कैसे जिंदगी थी उसमें। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह ताला उस कादिर है इसको वापस लौटा दे, और इसी के इंसान को भी, बादल मौत भी यहां से पता चलता है कि उठा दे इंसान को, क्योंकि कैसे वो मुर्दा होगा और अल्लाह ताला उसको जिंदा कर दे, दोनों एक ही बात है। और मैंने आपको ये जो हदीस पहले सुनाई है कि अल्लाह ताला ने रहमे मादर पे भी फरिश्ते को मुकरर किया होता है, वहां पे भी उसकी हिफाजत कर रहा होता है फरिश्ता। यौम तुबला सराइर, जिस दिन तुबला, बला से ये है, पहले हमने पढ़ा है ना बला, बला के हम पहले पढ़ चुके हैं, ला यबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, तो शुरू से हम पढ़ रहे हैं बला का माना क्या, जांचना, असल में होता है भला मुसीबत को भी कहते हैं ना हम, तो जब इम्तिहान होता है वो भी एक इंसान के लिए मुसीबत ही हो जाता है। तो इम्तिहान लिया जाएगा या जांचा जाएगा, पड़ताल की जाएगी, टेस्ट किया जाएगा असरार पोशीदा राजों को, पोशीदा बातों को। मैंने आपको बताया कि सीक्रेट्स की इसमें बात है, और इंसान की सीक्रेट्स को सिर्फ वहुस्सिला मा फिस सुदूर है ना, आगे आएगा कि सीक्रेट्स को सीनों से निकाला जाएगा, सिर्फ निकाला नहीं जाएगा तो बिला उनको जांच पड़ताल उनकी की जाएगी, उनको पूरी तरह देखा जाएगा। जैसे आपके सामान को कहते हैं खोलें अपना सामान, ये पॉकेट भी खोले, ये जिप भी खोले, ये यहां से भी खोले, सारे सामान को उधेड़ के रख देते हैं कि बाहर निकालो सब कुछ। अब पोशीदा राज सराइर, सराइर वो राज, सिर की जमा, वो राज जो इंसान ने बहुत छुपा के रखे हैं, वो राज जो उसके अंदर है, उनको पुल आउट किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा, इंसान एक्सपोज हो जाएगा। अब आप देखें कि अल्लाह अकबर, इस दुनिया में तो बहुत सारे राज राज ही रह जाते। जैसे हमने अभी बात की ना कि किसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या किसके साथ बीत रही है, बहुत सारे ये राज हैं जो इस दुनिया में कभी भी सामने नहीं आते। कई दफा आप मैस ग्रेव्स की बात पढ़ते हैं कि कहाँ से कोई मैस ग्रेव्स मिली, उनके अंदर हजारों लोग दफन किए, अल्लाह जाने वो कौन कौन लोग थे, क्या किसने किया, क्या हुआ, हॉरिबल स्टोरीज आपके सामने आती हैं। तो आप, वो तो राज है ना, वो राज उस दिन उनकी जांच होगी। अल्लाह अकबर। इसी तरह और भी दिलों के अंदर क्या है, दिलों में नियतें होती हैं, दिलों में हसद होते हैं, दिलों में कीने होते हैं, दिलों में मोहब्बतें होती हैं, दिलों में शौक होते हैं, हर चीज दिल से पहले आती है फिर उसके बाद जाहिर अमल में आती है ना। तो हम समझते हैं हमेशा कि पता नहीं जाहिरी अमाल का हिसाब होगा, नहीं, जो दिलों में छुपे हुए राज हैं उनकी भी जांच पड़ताल होगी, अकीदा क्या इंसान का वो भी पता चल जाएगा, जो छुप के किए हुए हैं चीजें वो भी पता चल जाएगी। सारायर सिर्फ दिलों की बातें नहीं, छुप के सदका भी किया, रोजा भी छुपा हुआ रखा था, वो भी सब आएगा। तो दिलों को सबसे ज्यादा तो सीक्रेट दिल में होती है ना, उनको चेक किया जाएगा। अब दिलों की चेकिंग करो, अच्छा कुछ सामान है आप नहीं चाहते कि ये खोला जाए, कब, इस वक्त आपको होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं पकड़ी जाऊं, तो आप कहते हैं कि चुपके से ही निकल जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ चुपके से कोई निकल नहीं सकेगा, क्योंकि दिल, अल्लाह के दिल भी दिखाओ, दिल भी खोले जाएंगे। हमारे दुनिया के अंदर तो लोग हमारे एक्शंस को देख के हमें जज करते हैं ना कि हम लोग कैसे हैं, कोई समझ लेता है कि हम बड़े नेक हैं, कोई समझ लेता है कि बुरे हैं, कोई समझ लेता है कुछ, लेकिन असल हम वो हैं जो हमारे दिल में हैं। मुनाफिकीन को भी उस वक्त मुसलमानों की तरह क्यों ट्रीट किया जाता था, इसलिए कि उनके एक्शंस मुसलमानों वाले ही थे। अगर दिल में मुनाफिकत थी, मुनाफिकत भी दिल में होती, तो ज्यादा फिक्र किसकी होनी चाहिए, दिल के अमाल की, दिल में क्या छुपा हुआ है, जाहिर में वही निकलेगा और जरूर निकलेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे मेरा दिल तो बहुत अच्छा है, मेरे अमाल पे ना जाओ, नहीं, दिल में जो होता है वो ही अमाल में आता है, कभी ऐसा नहीं हो सकता दिल कुछ है और अमल कोई और जा रहा है। तो इंसान अपने दिल की बातों को जांचे परखे इस दुनिया में, इससे पहले कि वो दिन आए जहां पे ये सारी चीजें बाहर लाई जाएंगी, और फिर इंसान को पता चलेगा कि कभी कभी इंसान अपने आप को ही धोखा दे रहा होता है, कह रहा होता है नहीं मैं तो बड़ी नेक नियति से ये काम कर रही, मैं तो अल्लाह की खातिर कर रही, लेकिन उसके दिल के अंदर छुपी होती है वो गर्ज कि मैं शोहरत पा जाऊं, वो गर्ज कि मुझे लोग अच्छा समझे, वो गर्ज कि लोग मेरी तारीफें करें। अल्लाह अकबर। वो तुबल सरायर उस दिन इनको जांचा जाएगा। और ये बहुत जरूरी है कि इंसान अपने दिल पे नजर रखे। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक दूसरे सहाबा से नमाज और रोजे की वजह से आगे नहीं निकले कि दूसरे सहाबा के नमाज रोजे कम थे और इनके ज्यादा थे। नहीं, दूसरे सहाबा भी नमाज रोजों में बहुत थे, बल्कि जो ईमान उनके दिल में था उससे आगे निकले। ईमान भी दिल में होता है ना। इबादत तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, मगर दिल में ईमान कितना है वो चीज है जो आपको आगे लेकर जाती है, वो चीज है जो आपको दूसरों से मुमताज करती है। उनके दिल में ही फिर कहीं गिल है, कहीं कीने हैं, कहीं गलत अकीदे हैं। अकीदे की भी सफाई दिल से ही होती है कि इंसान अपने दिल में अपना अकीदा दुरुस्त करे। फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर, तो उस दिन कोई कुव्वत नहीं होगी और ना ही कोई नासिर होगा। कुव्वत और नासिर तो क्यों चीजें कही गई? इसलिए कि देखिए, जब इंसान मुसीबत में फंसता है ना, तो सबसे पहले तो वो अपनी कुव्वत यूज करने की कोशिश करता है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ यूज करूं, अपना सारा जोर लगाता है। अगर वो अपना जोर ना लगा सके और अपने आप को समझे कि मेरे से तो नहीं ये काम हो सकेगा, फिर वो क्या ढूंढता है? मददगार, कोई इधर उधर मिल जाए, कोई मुझे बचा ले, कोई कुछ कर ले। तो दुनिया में तो इंसान अपनी भी पावर इस्तेमाल करता है और लोगों से भी मदद ले सकता है। जैसे पिछले लोगों ने जुनूद रखे हुए थे अपने, और उनके पास आर्मीज थी जो फिरौन और समूद के पास थी, लेकिन आखरत में कोई ना पावर होगी, पावरलेस होगा इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला है मालिक योमिद्दीन। पावरलेस होगा, बिल्कुल पावरलेस, हत्ता कि अपने आप को ढांपने तक की भी पावर नहीं होगी कि अपने कपड़े ही पहन ले, अपने पैरों में जूते ही पहन ले। बिल्कुल पावरलेस, खाली हाथ, और ना इतनी स्ट्रेंथ होगी कि किसी से मुकाबले कर ले, और ना ही कोई नासिर होगा। दोनों चीजों की नफी कर दी गई, यानी किसी चीज पे भरोसा करके ना बैठ जाना। उस दिन कितनी तुम कमजोरी की और बेबसी की हालत में होगे सोच तो लो, जिस दिन तुबला सरायर होंगे। वस्समा इदात रज, और कसम है आसमान की दात वाला, रज पलटने, रुजू से है ना लौटना पलटना। अब दोबारा कसम खाई गई, पहली कसम इंसान के ऊपर खाई गई कि ये इंसान तेरे साथ मुहाफिज है, दूसरी कसम कुरान के ऊपर खाई गई है। तो पहली कसम में क्या, जात रज किसकी इस कसम खाई है? आसमान जो पलटने वाला है, यानी आसमान की सिफत क्या है कि वो पलटने वाला, यानी उसके ऊपर से बारिश होती है ना आसमान से, और वो बारिश भी पलट पलट के आती है, बारिश भी ऊपर होती है ना असमा, इसीलिए वो वाला आसमान ही जो समावात वाला है वो नहीं, बस समा। और कसम है आसमान की जो बारिश वाला है, ये समझे, ये मुराद इससे बारिश ही मुफस्सरीन ने ली है, क्योंकि इसकी आगे एक कनेक्शन बनता है जिसपे कसम खाई गई है। वल अर्द ज़ात सदा, और जमीन की जो के सदा वाली है, जो फटने वाली है, सद क्रैक को कहते हैं, और ऐसी चीज का क्रैक होना जो सख्त हो, तो वो बंजर जमीन भी एक क्रैक हो जाती है जब बारिश बरसती है। आपको पता है वो बंजर जमीन क्रैक होती है और फिर उसके अंदर से फल फूल निकलते। इन्नहू लकौलुन फसल, बेशक ये एक फसल कौल है। फसल कौल मतलब क्या, एक बात है, बेशक वो एक बात है जो फैसला कुन है, फसल फैसले से, यानी ये दो कस्में खा के ये कहा गया कि ये कलाम पाक कौले फसल है। पहले तो कस्मों के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? तो देखें, बारिश के साथ कुरान करीम को तशबीह दी गई है दूसरी जगहों पे भी कुरान में, कि जो आसमान से बारिश बरसती है जमीन के ऊपर, उससे फिर जमीन फटती है और उसके अंदर से फसलें निकलती हैं, लहलहाने लगती हैं, सब्जा हर तरफ हो जाता है। इसी तरह वही की भी बारिश होती है जो दिलों पे होती है। देखिए ना, कलामे पाक, ये जो कुरान मजीद है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक पे उतरा था,
जहनों पे नहीं, दिलों पे ही अगर आप इसको लेंगे तो असर भी होगा, और फिर दिलों से ही फिर वो आगे अमल फिर फूटते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे बात की यौमतुल्ला सराइर में कि इंसान का अमल भी फिर वही होता है जैसे उसका दिल होता है। ठीक है, आप कहते हैं ना मुझे शौक है ये करने का, या मुझे मेरा दिल कर रहा था ये करने का, तो वो दिल चाहता ही है तो इंसान कोई अमल कर सकता है। तो वो जो इंसान के दिल पे जब वही की बारिश बरसी तो फिर वो फूटते हैं वो अमल, जो सब्जे की तरह है, जो हरियाली की तरह है, जो हर तरफ ग्रीनरी कर देते हैं, बहार आ जाती है। लिहाजा इसका मतलब है कि एक तो दिल पे कुरान को लेने की जरूरत सिर्फ ये इस तरह से नहीं होती कि इंसान तर्जमे रट ले, इंसान बस नंबर ले ले और इंसान ग्रेजुएट हो जाए, बल्कि अगर आपका दिल उसके ऊपर ये बारिश नहीं बरसी और दिल फटा नहीं और उससे सब्जा नहीं निकला आपकी जिंदगी में, आमाल के जरिए एक रौनक नहीं आई, बहार नहीं आई, तो इसका मतलब है दिल की जमीन जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि तीन तरह के लोग हैं जो कुरान की वही को लेते हैं, कैसे कि एक तो वो लेते हैं ना जो कि उस जमीन की तरह है ना, जो जमीन इतनी फर्टाइल है, इतनी जरखेज है कि उसके ऊपर जब बारिश बरसती है तो उससे सब्जा भी निकलता है, लोग भी फायदा उठाते हैं और वो जमीन भी हरी भरी होती है। दूसरे वो जमीन है जिसके ऊपर पानी बरसता है, तो वो जमीन जो है वो थोड़ी सख्त होती है तो वो पानी को ठहरा लेती है अपने पास, तो वो खुद तो नहीं उसके अंदर जज्ब हुआ लेकिन इर्द गिर्द वालों ने उससे फायदा उठाया कि वहां से पानी ले जाते। और तीसरी वो जमीन है जो ना तो पानी ठहराती है और ना ही उसके अंदर सब्जा उगता है, क्योंकि वो है ही खराब जमीन। तो अब इसी तरह इंसानों का भी हाल है, कुछ इंसान वो हैं जो वही लेते हैं और वो खुद भी अमल में लेकर आते हैं और दूसरों को भी फायदा देते हैं, कुछ है जो उनके अपना अमल तो इतना नहीं बदलता लेकिन लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग फायदा ले लेते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने खुद अमल करना ना किसी तक पहुंचाना। तो ये इंसान के साथ, ये कुरान की तशबीह बारिश के साथ बहुत अच्छी तरह हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और क्योंकि हम बारिश को रोज देखते हैं कि बारिश कैसे बरसती है और क्या उसके यानी आगे समरात उससे निकलते हैं और कैसे जमीन होती है और किस तरह की जमीन क्या उगाती है, उसी तरह हम अपने दिल को भी देख लें कि हमारे दिल की जमीन कैसी है, क्योंकि हम शक कुरान में नहीं कर सकते कि बारिश में कोई मसला था, बारिश तो प्योर ही होती है, ये जमीनें मुख्तलिफ होती हैं जो किस तरह से लेती हैं उस बारिश को। तो फरमाया कि ये कसम खा के और आसमान की जो बारिश बरसाने वाला और जमीन की जो फटने वाली है और वो फूल पौधे उगाने वाली है, कि ये कुरान औले फसल है, ये कुरान वो है जो फैसला कर देता है, हक और बातिल में फैसला कर देता है, नेकी और बदी में फैसला कर देता है, झूठ और सच में फैसला कर देता है, क्या हक है और क्या ना हक है उसमें फैसला कर देता है, नेक और बद सब अलग अलग हो जाते हैं, तमीज कर देता है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान पे के पास आया और मुझे नहीं समझ आई और मुझे तो पता ही नहीं चला कि हक क्या और बातिल क्या है। यानी अगर आपको जानना है ना कि हक क्या और बातिल क्या, तो कुरान के पास आओ, क्योंकि ये है ही कौले फसल, कुरान से समझो, कुरान से रहनुमाई लो, आपको रास्ता पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। और वमा हुआ बिल हजल, और वह माँ और नहीं हुआ वो कौन कौले फसल यानी कुरान, बिल हजल, हजल कहते हैं जिस जो कुछ प्रोड्यूस ना करे, जिसका कोई नतीजा ना निकले, यानी बेफायदा, जो चीज का नतीजा ना निकले तो बेफायदा है ना, यानी बेफायदा कलाम नहीं है ये, कोई अम्यूजमेंट नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि बेफायदा सी चीज हो, ये वो चीज नहीं है कि जिसका कोई फायदा ना हो, ये तो इल्मे नाफे है जो दुनिया में भी नफा देता है और आखरत में भी नफा देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इसको बेफायदा चीज समझते, नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं समझते, हमारा तो ईमान है इस पे, लेकिन हम जुबान से ऐसे कहते हैं, अगर हम किसी चीज को फायदामंद समझते हैं तो वो तो हम इस्तेमाल में लाते हैं। आप देखें जिन चीजों को आप बेकार समझते हैं उनको तो आप पीछे रखते हैं, कहीं कहीं आपके क्लोजेट में भी पीछे पड़ी होंगी, कहीं आपके घर में भी पीछे पड़ी, इसका कोई फायदा ही नहीं, लेकिन जिन चीजों से आप समझते हैं कि ये यूजफुल है, फायदा मंद है, उसको आप इस्तेमाल भी करते हैं, उसको आगे भी रखते हैं, ये भी अगर ताक में पड़ा हुआ है, ये भी अगर आपके हाथों में आता ही नहीं, इसका मतलब आप उसको बेफायदा ही समझते हैं ना। मतलब आप नहीं समझते कि इसका कोई मेरी जिंदगी में कोई नफा है मुझे। तो वमा हुआ बिलहासिल, ये बेफायदा बात नहीं कि तुम इसे ऐसे ही बेइतनाई बरसो बरतो और उसको एक साइड पे रखो। इधर उधर की बात नहीं, ये अम्यूजमेंट नहीं है, ये कोई हंसी दिल लगी की बात नहीं है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया इस चीज को, यानी इंसान ऐसा ना ले कि बस सुना और उठ के चल पड़े, जैसे कि कोई एक जोक्स कहीं सुनते हैं आप, कहीं एंटरटेनमेंट सुनते हैं, या कहीं कॉमेडी सुनते हैं, या कहीं और कोई बातें सुनते हैं, या कोई ड्रामा देखते हैं, तो उसके बाद उठ के बस चल पड़ते हैं और कहते हैं अच्छा बड़ा मजा आया आज की किस्त देख के, और उसके बाद थोड़ा उसका कोई असर हमारी जिंदगी पे होता है। तो कुरान ऐसी तफरी वाली चीज नहीं है कि हम इसको पढ़ के सुन के और उसके बाद कपड़ा झाड़ के कहें अच्छा दर्स था आज, और फिर हमारी जिंदगी पे कोई असर ही ना हो। इन्नहुम यकीदूना कईदा, बेशक वो चाल चल रहे हैं। कईद कहते हैं चाल को। कईद मकर से मुख्तलिफ है, मकर में धोखा भी होता है, ठीक है, और कईद प्लॉट करना, कईदा एक चाल, व अकीदु कईदा, और एक चाल मैं भी चल रहा हूं। यहां पे भी अल्लाह ताला का नाम नहीं आया देखिए, बल्कि ये जैसे मैंने आपको कहा कि ये सीक्रेट्स वाली सूरत है, तो अल्लाह ताला ने इसके अंदर इन्नहुम यकीदुना कईदा, वो चाल चल रहे हैं, यानी ये काफिर चालें चल रहे हैं और एक चाल मैं भी चल रहा हूं। फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुवईदा, तो आप ढील दीजिए काफिरों को, ढील देना इनको रुवईदा, अमहिल पहले माहिल, माहिल ढील दे काफिरों को, अमहिल फिर ढील दे, ये बाबे इफ़ाल से है वो। देखिए अब है दोनों अमर के सीगे, लेकिन बाब फर्क हो गए। अमहिल में ताकीद है, मुबालगा, ढील दे इनको रुवईदा, रुवईदा औद से रुवईदा, तो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए, यानी जल्दी ना कीजिए। अगर ये जितनी भी चालें चल रहे हैं, जितना भी आपके लिए मुखालफत के लिए प्रोपोगेंडा कर लें, लेकिन एक चाल इनकी है और एक अल्लाह ताला की चाल है। अब अल्लाह ताला को माकित नहीं आप कह सकते, किस लिए, कि ये अल्लाह ताला का नाम नहीं है, बल्कि ये उन्होंने जो किया वैसे ही अल्लाह ताला ने उनके साथ किया, ये कहने का मतलब। तो जो वो चाल चल रहे हैं वो ये ना समझे कि उनकी चालें कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला भी एक उनके साथ वैसी ही चाल चलेगा। और आप देखें कि उन्होंने चालें चली, बहुत चालें चली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी साजिश की और इस दीन को मिटाने की भी साजिश की, प्रोपोगेंडास भी किए, लेकिन कुछ भी कामयाब ना हुआ। अल्लाह ताला की भी एक चाल है, वो तो देखें आके गारे सौर में ऊपर खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा था कि इतने 100 ऊंट उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर की कीमत लगा दी थी, लेकिन क्या हुआ, सुराका का घोड़ा भी वो उसके पैर ही जमीन में चले गए, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश ही नहीं कर सके। क्या बात थी, उनके कान नहीं काम करते थे, आंखें नहीं काम करती थी, वो गार के मुंह के ऊपर खड़े हुए थे, उनको नजर नहीं आ रहा था कि वो अपने, अबू बकर सिद्दीक सर फरमाते हैं कि वो अपने पैरों की तरफ भी देखते तो हम नजर आ जाते, अंधे तो नहीं थे ना वो। वो तो जैसे भेड़िए की तरह इनकी ताक में थे, तो फिर उनको क्यों ना नजर आया कि एक चाल अल्लाह ताला की होती है। वो घर को घेरा डाल के खड़े हुए थे, उनको क्यों नहीं नजर आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल रहे हैं। तो चालें चलते ना, अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह ताला होता है ना, फिर अल्लाह ताला जब अपनी चाल चलता है तो फिर उनको समझ ही नहीं आती। तो आप क्या करें, आप इनको ढील दें, आप इनको मोहलत दें, यानी इनके मामले में जल्दी ना करें। वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन ऐ नबी आप ना ये सोचे कि ये जल्दी इनको इनका अंजाम मिल जाए, तो इनके ना, यानी आपको पता चल गया कि ना इनके खिलाफ को बदुआएं करें, ना इनके लिए कोई जल्दी मांगे, जहन्नुम मांग ले, ना इनके लिए कोई अजाब मांग ले, ना कि कह दे कि आप कयामत जल्दी आ जाए, बल्कि इनको टाइम दे,
थोड़ा सा टाइम, ये कोई टाइम थोड़ा ही है, और थोड़ा ही टाइम था कि उसके बाद फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में, एक फुरकान हो गया, फर्क हो गया, और फतह मिली मुसलमानों को, फिर मक्का फतह हो गया, फिर अरब मुसलमान हो गया। तो थोड़ी देर है ना, यानी हमेशा के लिए ढील नहीं देनी, थोड़ी ही देर है। तो सुनते हैं इस आयत, इस सूरह की तिलावत।
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.